अब तो यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या बना रही है, चल अंदर जाकर नहा धोकर फ्रेश हो, कपड़े बदल, फिर मैं आकर देखती हूँ कि कहाँ कहाँ और कितनी चोट लगी है। राधिका ने अप्पू को प्यार से झिड़की दी तो वो मुंह बनाते हुए लंगड़ाते हुए अंदर चली आई। राधिका ने उसका बैग अंदर किया, फिर दरवाजा बंद करके उसके पास आ गई। आजा, मैं मदद कर दूं तेरी, राधिका ने उसे सहारा देना चाहा, पर नाराज अप्पू ने उसका हाथ झटक दिया। कोई जरूरत नहीं, आप जाइए, जाकर अनुदी के भाई पर प्यार बरसाइए, उसी से बातें कीजिए। मेरी तो आपको कोई फिक्र ही नहीं, ना ही इस घर में मेरी कोई वैल्यू है और ना ही मेरी बात पर किसी को भरोसा है। मतलब हद होती है अविश्वास की भी। मैंने भी तो वही कहा था, पर आपको उस लड़के की बातों पर विश्वास हुआ जो आपके लिए अनजान था, पर अपनी खुद की सगी बहन को आप शक भरी नजरों से घूर रही थी। चोट मुझे लगी थी, मेरी चिंता होनी चाहिए थी आपको, पर आप उसकी मेहमान नवाजी करने में लगी थी, अपनी बहन को संभालने के बजाय उन्हें घर में बुला रही थी। राधिका हाथ बांधे खामोशी से अप्पू की शिकायतें सुनती रही, फिर अपनी खामोशी तोड़ते हुए हल्की चिड़ भरे स्वर में बोली, ए नौटंकी, अब अपना नाटक बंद कर। सब जानती हूँ मैं कि खुद तो मुझसे तूने झूठ कहा था, उस बेचारे से भी झूठ बुलवाया। मैं क्या तेरी हरकतें नहीं जानती? फिर से किसी से भिड़ गई होगी और मुझे नहीं बता रही कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊँ, तुम पर गुस्सा ना करने लगूँ। और अभी मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो हुआ वो जानने से ज़्यादा मुझे तेरी फिक्र है। जानती हूँ कि जो भी हुआ कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं ही अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझ गई कि मेरे दिमाग से तेरा ख्याल ही निकल गया। अगर मैं तुझे लेने चली गई होती तो जो भी हुआ वो नहीं होता। सारी बातें तुम्हें बाद में तुमसे पूछ ही लूँगी, अभी तुम्हारी चोट का इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों जैसे निशान से चिढ़ना बंद करो, उसने तुम्हारी मदद की, तुम्हें सही सलामत घर तक लाया, इसलिए मैंने उसको थैंक यू कहा। अनु का भाई था, ऐसे दरवाजे से ही वापस भेजना ठीक नहीं होता, इसलिए अंदर बुलाया था, और तुम इतने में ही जलने लगी। हाँ, तो आप मेरी दी हैं, आपका सारा प्यार, अटेंशन और परवाह सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, मैं आपको किसी के साथ नहीं बांटूंगी। अप्पू ने बच्चों जैसे नाक से कोड़ते हुए अपने गालों को फुलाते हुए मुंह बिचका लिया। बड़ी पोजेसिव थी वो अपनी दी को लेकर, और राधिका उसकी जलन देखकर मुस्कुरा उठी थी। मैं तुमसे पापा के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अब चलो कमरे में। आवाज़ सुनकर पापा उठ गए और तुम्हें ऐसे देख लिया तो परेशान हो जाएंगे। अप्पू ने जब राधिका की बात सुनी तो चहकते हुए उससे लिपट गई। दी, आप मुझे लेने क्यों नहीं आई थी? मैंने आपको फ़ोन भी किया था, पर आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। इस वक्त दोनों बहनें अप्पू के कमरे में बैठी थी और राधिका उसके जख्मों को साफ करके दवाई लगा रही थी। अप्पू का सवाल सुनकर पल भर को उसके हाथ ठहरे, फिर उसने धीरे धीरे उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर अप्पू परेशान हो गई। पापा ठीक तो है ना दीदी, मैं एक बार उन्हें देखा हूँ। पापा अब ठीक है, बीपी लो की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था और ये हादसा हो गया। अभी कमजोरी है, पर चिंता वाली कोई बात नहीं, तुम कल सुबह मिल लेना उनसे। अभी कुछ देर पहले ही दवाई खाकर सोए हैं, अगर अभी मिलने गई तो उनकी नींद खराब होगी, तुम्हें इस हालत में देखकर वो भी परेशान हो जाएंगे, जबकि अभी उनके लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। और तुम भी तो थकी हुई हो, तो तुम आराम करो, मैं हम दोनों का खाना यहीं लेकर आती हूँ। राधिका ने प्यार से उसे समझाया और कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में डिनर किया, साथ ही अर्पिता उसे अपनी ट्रिप के बारे में बताती रही और बातें करते हुए दोनों साथ ही सो गईं। अगले दिन अर्पिता आशुतोष जी से मिली, पर उन्हें अपने साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दिया, उनके पास ही बैठी रही। राधिका ने भी आज छुट्टी ले ली थी और तीनों ने सारा दिन एक साथ बिताया था। शाम का वक्त था, राधिका सब्जी लेने पास के लोकल मार्केट तक गई थी। जब घर लौटी तो वहाँ माधव को पहले से मौजूद देखकर बुरी तरह से चौंक गई। आशुतोष जी से बातें करते माधव की नज़र उस पर पड़ी तो राधिका ने आंखों से ही सवाल किया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने से? हैरान से ज्यादा अब राधिका उससे नाराज थी। माधव ने खुद को निर्दोष साबित करते हुए मासूम और बेबस शक्ल बनाकर आशुतोष जी की ओर इशारा कर दिया, मतलब साफ था कि उन्होंने उसे यहाँ बुलाया था। ये जानकर राधिका हैरान थी। इतने में अप्पू उसके पास पहुँच गई और फुसफुसाते हुए बोली, दी, उन्हें घूरना बंद कीजिए, खुद से नहीं आए हैं वो यहाँ, पापा ने उन्हें बुलाया है और मैंने बुलाया है। उन्होंने पापा की जान बचाई, कल आपकी इतनी मदद की, तो एक थैंक यू कहना तो बनता था, बस इसलिए मैंने और पापा ने मिलकर आज उन्हें डिनर पर इनवाइट कर लिया। तुमने उन्हें यहाँ बुलाया है? राधिका की हैरानी भरी निगाहें उसकी ओर घूम गई। अर्पिता ने झट से हामी भर दी तो अब राधिका भौं चढ़ाए उसे घूरने लगी, तुम्हें इनका नंबर कहाँ से मिला? आपके फ़ोन से। अर्पिता ने लापरवाही से अपनी बत्ती सी चमकाई और खुद पर ही इतराने लगी, जबकि राधिका का चेहरा बता रहा था कि अभी उसे अप्पू पर कितना गुस्सा आ रहा था। लेकिन अप्पू ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और आंखें मटकाते हुए बोली, कम ऑन दी, मुझे इतना मत घूरो, शर्मा जाएगी मुझे। अर्पिता ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लिया, फिर आंखों के आगे से उंगली हटाकर उसे देखने लगी। राधिका अब भी उसे घूर रही थी। अर्पिता ने अब अपनी नौटंकी खत्म की और गंभीरता से बोली, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, मैंने तो बस वही किया है जो पापा ने मुझे करने कहा था। तो अगर किसी पर नाराज होना है तो पापा पर हो, पर वो भी बाद में होना। गेस्ट के सामने लड़ाई करते हुए आप अच्छी नहीं लगेंगी, तो अपना गुस्सा शांत कीजिए और रसोई की ओर प्रस्थान कीजिए। चाय नाश्ता तो मैंने करवा दिया है, अब डिनर आपको तैयार करना है। और याद रहे, खुद शेफ है वो, कहीं उनके आगे हमारी नाक ना कट जाए। छोटी थी पर उसे ऑर्डर दे रही थी। राधिका ने गुस्से में जबड़े बीचे और चिढ़ते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही अर्पिता मुस्कुराते हुए आशुतोष जी के पास आकर बैठ गई। बाहर होटी बातों, हंसी मजाक और ठहाकों की आवाज अंदर किचन तक आ रही थी और बेचैन राधिका खुद में उलझी परेशान सी खाना बनाते हुए माधव के यहाँ आने के बारे में ही सोच रही थी। देखिए माधव जी, आप तो ठहरे शेफ, पर मेरी दीदी शेफ नहीं है, पर खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो बिना कोई नुस्खा निकाले और बुराई किए चुपचाप खाना खा लीजिएगा, अप्पू माधव को धमका रही थी। राधिका ने उसे आंखें दिखाई पर उस पर कोई असर नहीं हुआ और माधव ने तो उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर हामी भर दी थी। खैर, खाना शुरू हुआ। वाकई में खाना लाजवाब बना था। जब माधव ने खाने की तारीफ की तो राधिका के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई, पर अगले ही पल उसे कुछ ऐसा याद आया कि उसके मुस्कुराते लब सिमट गए, जिस पर किसी और ने गौर किया हो या ना किया हो, पर माधव सब देख चुका था। माधव जा चुका था, पर जाते जाते राधिका के मन में हलचल मचा गया था। दूसरी तरफ माधव भी आज कुछ उलझा हुआ था। कुछ दिन बीत गए थे, माधव आशुतोष जी से मिलने उनका हालचाल पूछने आता। उसके आने पर आशुतोष जी बड़े खुश होते थे और दोनों में काफी बातें भी होने लगी थी। अर्पिता से भी माधव की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई थी। राधिका को अब उसका यहाँ आना बुरा नहीं लगता था। ऐसा लगता जैसे वो भी इसी परिवार का हिस्सा है, बस कभी कभी आगे का सोचकर वो बेचैन हो जाती थी। आशुतोष जी काफी हद तक ठीक हो चुके थे, राधिका की जिंदगी बढ़िया चल रही थी, पर माधव की शान जिंदगी में तूफान आने वाला था जिससे अब तक वो खुद बेखबर था।
आज भी वो आशुतोष जी से मिलने आने के लिए निकला था, पर रास्ते में शिखा का फोन आया और हड़बड़ी में उसने बाइक घर की ओर घुमाई। अनुपमा जी अचानक ही बेहोश हो गई थी और शिखा घबरा गई थी। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हार्ट अटैक आया था उन्हें, ये सुनकर ही शिखा घबराकर रोने लगी। परेशान तो माधव भी था, पर उसने खुद को संभाल लिया और शिखा को भी संभालने लगा। आज जब माधव घर नहीं आया तो राधिका ने उसे फोन कर दिया और जैसे ही उसे अनुपमा जी के बारे में पता चला, आशुतोष जी को बताकर वो सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गई। माधव जो खुद मन ही मन डरा हुआ था, राधिका के आने से उसे संबल मिल गया था और जिस तरह से राधिका ने शिखा को संभाला था, मन में प्रबल इच्छा उठी थी उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करने की। खैर, 7-8 घंटे ऑपरेशन चला था, केस क्रिटिकल था और अनुपमा जी की हालत गंभीर, पर गनीमत थी कि उन्हें कुछ हुआ नहीं, ऑपरेशन सफल रहा था। सारी रात राधिका वहीं रुकी और सुबह शिखा को अपने साथ लेकर घर चली आई, जबकि माधव वहीं अनुपमा जी के पास रुका था जिन्हें अभी तक होश नहीं आया था। माधव आईसीयू के बाहर लगी चेयर पर सर झुकाए बैठा था जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उस स्पर्श को पहचानते हुए माधव ने अपनी आंखों को कसके भींच लिया। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? डॉक्टर ने कहा तो है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, आंटी खतरे से बाहर हैं, कुछ घंटों में उन्हें होश भी आ जाएगा, आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए। सोचिए, बुरा वक्त था, गुजर गया, अब आगे सब अच्छा होगा। उसके बगल में बैठी राधिका उसके कंधे पर हाथ रखे उसे समझा रही थी, उसे ढांढस बंधा रही थी। माधव जो अब तक चट्टान जैसे मजबूत बनकर खड़ा था, राधिका के कहे चंद शब्द सुनकर ताश के पत्तों जैसे बिखर गया और भावनाओं के आवेग में उसने पलटकर राधिका को अपनी बाहों में भर लिया। राधिका शॉक थी, सब इतनी अचानक हुआ कि उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, और जब तक उसे कुछ समझ आया वो माधव की बाहों में समाये उसके सीने से लगी थी। इन करीबियों का एहसास होते ही पल भर को राधिका कुछ असहज सी हो गई, उसकी सांसें थम सी गईं, पर जैसे ही ध्यान माधव की खुद पर कसती बाहों और उसके दिल की बढ़ी धड़कनों पर उसका ध्यान गया, उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। उसका दर्द और डर समझ रही थी वो, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने भी यही भय महसूस किया था, इतनी ही तकलीफ में थी वो। या शायद माधव के लिए ये स्थिति और भी मुश्किल है, क्योंकि उसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था, उसके बाद से अनुपमा जी ही उसके लिए सब कुछ बन गई थी। आशुतोष जी की हालत इतनी भी सीरियस नहीं थी, वो तो उनसे मिल ली थी, पर माधव को अभी अपनी ही माँ से मिलने की इजाज़त नहीं थी, अनुपमा जी तो अब भी बेहोश थी। फिर वो एक लड़का था, राधिका को आज़ादी थी कि दुखी होने पर रो सकती थी और रोई भी थी, पर माधव को कमज़ोर पड़ने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उसके साथ उसकी छोटी बहन थी, अगर उसकी आंखों से एक आंसू भी निकलता तो शिखा को संभालना मुश्किल हो जाता, इसीलिए माधव ने अपने दुख डर सबको अपने अंदर ही छुपा लिया और अब उसकी भावनाएं उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उसे सांत्वना, सहानुभूति या समझाइश की ज़रूरत नहीं थी, बस ज़रूरत थी तो अपने के साथ की, कुछ वक्त की। राधिका ने अपनी बाहों को उसकी पीठ पर लपेट दिया और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगी। दोनों ही एकदम खामोश थे, पर बहुत कुछ था उनमें दरमियान जो अनकहा सा और अनसुना सा था। राधिका की नम आंखें और उस पर माधव की कस्ती पकड़ उनके रिश्ते की गहराई दर्शा रहे थे। खैर, कुछ देर में माधव का मन शांत हुआ तो उसने एक बार फिर अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया, और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने राधिका को कितनी सख्ती से अपनी बाहों में बिठाया हुआ है, वो हड़बड़ाते हुए उससे दूर हो गया। सॉरी, वो मैं, इट्स ओके। नजरें चुराता माधव अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका था कि राधिका की ठहरी हुई सौम्य सी आवाज़ उसके कानों से टकराई और उसकी हैरानी भरी निगाहें उसकी ओर उठ गईं। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप कैसा फील कर रहे होंगे। जब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे तब मैं भी कमज़ोर पड़ गई थी, तो अगर आप भी कमज़ोर पड़ गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरे गले लगकर आपका मन हल्का हो गया तो अच्छा ही है। इसके लिए आपको सफाई देने या एम्बैरेस्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब अगर आपका मन शांत हो गया हो तो जल्दी से हाथ मुँह धोकर आइए। मैं गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ आपके लिए, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, राधिका ने सौम्यता से कहा। उसकी बात सुनकर माधव पल भर को उसे देखता रहा, फिर निगाहें फेरते हुए मायूसी भरे स्वर में बोला, आपने बेवजह ही इतनी तकलीफ उठाई, मुझे भूख नहीं है अभी। भूख कैसे नहीं है? कल रात से आपने कुछ नहीं खाया है, इसलिए ज्यादा नखरे मत दिखाइए और चुपचाप हाथ मुंह धोकर आइए। राधिका ने बड़े हक से उसे डांट लगाई थी, पर उस डांट में भी माधव के लिए उसकी फिक्र ही झलक रही थी, लेकिन माधव अब भी ना माना। राधिका, सच में मुझे भूख नहीं है और ना ही मेरा मन है अभी कुछ खाने का। आप इसे वापस ले जाइए और दोबारा ऐसे मेरे वजह से परेशान मत होइएगा। राधिका कुछ पल खामोश बैठे माधव को देखती रही, जो उससे रुख फेरे बैठा था, फिर उठकर उसके सामने खड़ी हो गई और चेहरे पर नाराजगी के भाव लिए उसे खफा खफा निगाहों से घूरने लगी। क्यों, परेशान होने का हक क्या सिर्फ आपको है? आप ही मेरे और मेरे पापा के लिए परेशान हो सकते हैं, मुझे अधिकार नहीं आपकी चिंता करने और ख्याल रखने का। मेरा वो मतलब नहीं था राधिका। राधिका की नाराजगी भरे चेहरे को देखकर माधव हड़बड़ा गया। उसने सफाई देनी चाहिए, पर राधिका ने बीच में ही उसे टोक दिया। मुझे आपकी कोई सफाई वफाई नहीं सुननी है, मैं पहले ही बहुत थकी हूँ। बड़ी मुश्किल से शिखा को समझा बुझा कर खाना खिलाकर सुला कर आई हूँ, तो अब आप भी अपनी बहन जैसे नखरे दिखाकर मुझे तंग करना बंद कीजिए और चुपचाप जाकर हाथ मुंह धोकर आइए। अगर अभी आपने मेरी बात नहीं मानी, चुपचाप आकर खाना नहीं खाया, तो ना तो आपसे बात करूंगी और ना ही दोबारा लौट कर यहाँ आऊंगी।
फिर आप बैठ जाइएगा अनसन पर, कर लीजिएगा अपनी तबीयत खराब और इसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइएगा, पर तब भी मैं आपको देखने नहीं आऊँगी और शिखा को और बता दूंगी कि कितना अच्छा है उसका भाई। जब उसे अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना चाहिए था, वो खुद अपनी लापरवाही के कारण तबीयत खराब करके हॉस्पिटल बेड पर पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी बहन पर आपका, और वो माँ के साथ साथ अपने भाई को भी बीमार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। एक के बाद एक ताने ही मार रही थी वो उसे, उसे समझा कम और धमका ज्यादा रही थी। राधिका ने तीखी निगाहों से उसे घूरा तो अब की बार माधव बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से उठकर चला गया, और उसे जाते देखकर राधिका के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसका काम जो बन गया था।